चंद बातें जो हम हर साल कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से कहनी होती हैं और आज के दिन की मुनासबत आज के दिन के मौके को इस्तेमाल करते हुए मैं चंद पॉइंट्स आपकी खिदमत में सरी अर्ज़ करूँगा और ताकि जो हर साल में कोशिश कर रहा होता हूँ वो भी पूरी हो जाए और इंशाल्लाह हम इसको मौजू से मुतसिल करें। हमारे ख्याल में आज का दिन इस लिहाज से हमारे लिए अहम होगा कि हम बहुत सारे पॉइंट्स को इसमें जमा करने की कोशिश करेंगे और आपसे हमारी दरख्वास्त होगी कि जैसा भी सख्ती हो, तंगी हो, जगह की कमी हो या गर्मी हो, अभी तामुल फरमाइएगा और अपनी तवज्जोहात को फोकस रखिएगा इंशाल्लाह ताकि हम इसको अंजाम दे सकें। एक बार फिर आप अपनी और तमाम अज़ादाने शहीद शुहदा की सलामती के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। बाद अवकात बहुत छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ये कि जब ये खुतबा जिक्र किया जाता है जिसमें हम्द होती है, नबी का नाम लिया जाता है और उनकी औलाद का नाम लिया जाता है, तो बाद अवकात मेरे ख्याल में जो यहाँ बैठे हों उनके जहन में आता है कि हमें इस मौके पर क्या करना चाहिए। आपको फोकस करना चाहिए वही नबी के नाम पर, वही अल्लाह के हम्द के ऊपर, रसूल ग्रामी की औलाद के जिक्र के ऊपर, इस पर फोकस कर। जो कुछ आप पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पर, आप ज़मीन की तशरीफ़ फरमा हैं, जो जाहिर है कुर्सियों पर बैठे हुए हैं किसी मजबूरी की वजह से बैठे हुए हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ज़मीन पर बैठें लेकिन जाहिर है कोई मजबूरी है, बीमारी है, इस अगर तो आपके जो फर्श पर बैठे हुए हैं और ये मिंबर रसूल की शबीह बनाई जाती है और शुरू में हम फिर नबी पे दुरूद, उनके औलाद पे दुरूद, ये सारे तरीके सदियों से ऐसे चल रहे हैं, इनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं जो हम तब्दील करना चाहेंगे, यह हमारा सदियों का काम। तो ये जितना पैटर्न है ये हमने मौला चौथे इमाम से सीखा हुआ है। जब वो मदीने तशरीफ़ लाए तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि उन्होंने एक बैठने के लिए एक जगह उनके लिए तैयार की गई, इमाम सियाह लिबास में तशरीफ़ फरमा हुए, खुदा की हम की नबी का जिक्र किया, औलाद नबी का जिक्र किया, तिलावत कुरान करीम में से एक आय करीमा अल्लाह के उस वली ने और इमाम ने इरशाद फरमाया। तो हम ये पैटर्न वही रखे हुए और इसमें मैं चाहूँगा आप भी अपने जहन में क्लियर रहें, मेरे जैसे लोग भी बिल्कुल क्लियर रहें, भाई हमें इसमें कोई तब्दीली नहीं चाहिए। यानी अगर कोई मुझसे कहे कि मौलाना आप एक प्रेजेंटेशन दे दिया करें, आप ऐसे बैठ जाएँ वैसे बैठ जाएँ, मुझे बिल्कुल नहीं करना। उसकी वजह यह है कि मुझे ये पता है कि ये मिंबर तो 1400 साल चला है और कोई चीज़ नहीं चली है, ये चला है, इसको तब्दील करने का कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। पैटर्न यही रहेगा, तरीक़ेकार यही रहेगा, ज़माने तब्दील होती रहेंगी, थोड़े बहुत कल्चर्स तब्दील होते रहेंगे लेकिन जो बुनियाद है वो इसी तरीके से रहेगी। आप फोकस करें, जब हम पढ़ा कही जा रही है तो आप उसके ऊपर फोकस करें। खुतबे के दौरान फातिहा क्यों पढ़वाई जाती है? बाज़ औक़ात ज़हन में ये होता है कि ये मरहूमीन के ही सारे सवाब के लिए पढ़ाई जाती है, वो एक मकसद हो सकता है, शायद मकसद इससे बढ़कर भी है। मरहूमीन के ही सारे सवाब के लिए तो हम और जगहों पर ही पढ़ते हैं, ये जो मजलिस से पहले फातिहा पढ़ी जाती है, आप इसमें ये भी देखते होंगे कि हमेशा हम जैसे पढ़वाने वाले नहीं कहते कि मसलन अरवाहिल मरहूमीन, मरहूमीन के अरवाह नहीं कहते, हम सिर्फ कहते हैं फातिहा। क्यों कहते हैं? ये सूरह फातिहतुल किताब है, तो उरफा बयान करते हैं कि जब फातिहा पढ़ी जाती है तो आसमान के गोया दरवाजे इल्म पहुंचाने के लिए खुलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए फातिहा पढ़ाई जाती है। तो आप इस फातिहा पे फोकस करें, फातिहा मुतवज्जो के साथ पढ़ें। इस बड़े बड़े उरफा गुजरे हैं, उनमें से एक आरिफ रजब अली नाम करके थे, उनका एक ख़ास पैटर्न था कि जब उनके शागिर्द वगैरह जमा होते थे, उनके सामने कोई मांगनी मुश्किल रखी जाती थी तो सबसे कहते थे मिल के फातिहा पढ़ो, जब ये फातिहा पढ़ेंगे तो आसमान के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। हम लोग, मेरे जैसे लोग किसी काबिल नहीं हैं कि हम आसमान के दरवाजे खोल पाएँ, लेकिन मुझे इतना यकीन है जब इतना मजमा मिल के फातिहा पढ़ता है कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो आप इसको किसी भी चीज़ को कम अहमियत मत समझिएगा, ये बहुत चुन चुन कर सदियों में तय हुआ है कि ये काम कैसे होना है। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से हैं, इंशाअल्लाह खुदा ने मुझे कबूल फरमाएगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। उसके बाद कहीं कहीं कुछ गुंजाइश हमें मिल भी जाती है مثال کے طور پر میں بچپن سے جتنے خطبہ کو سنتا تھا، علماء خطبہ اور ذاکرین کو، تو وہ سب کے سب مجلس کے شروع میں ایک آیہ کریمہ پڑھا کرتے تھے، اور معمولاً اس سے شروع کرتے تھے کہ آج جو ہمارا بیان ہے وہ اس آیہ کریمہ کے حوالے سے ہے. میں نے یہ نہیں کیا، اور میں جب سے مجالس پڑھ رہا ہوں الحمدللہ اس عادت مجھے نصیب ہو رہی ہے، میں صرف ایک ہی آیت پڑھتا ہوں مجلس کے لیے، اور یہ وہ آیت ہے جو سید الشہداء کے سر اقدس میں پڑھی تھی. جب سید الشہداء کے سر اقدس نے تلاوت قرآن کریم کی تھی، یہ آیت کریمہ پڑھی تھی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ اصحاب رقیم اور اصحاب کہف وہی اللہ کی سب سے بڑی نشانی؟ تو سید الشہداء کا سر کہہ رہا تھا کہ میں جو تلاوت کر رہا ہوں یہ بڑی نشانی. تو میرے ذہن میں ہمیشہ ایک بات آئی، بہت برسوں پہلے جب میں نے مجلسیں پڑھنا شروع کی، وہ یہ کہ ہم جتنا بھی مجلسیں پڑھ رہے ہیں اور عزاداری ہو رہی ہے، یہ سر امام حسین کی اس تلاوت کا صدقہ ہے اور کچھ نہیں. تو زیادہ تر میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں جب آئے کریمہ پڑھوں تو سر سید الشہداء سے توسل کروں اور کہوں مولا ہم آپ کی ذکر کو جاری رکھنے کے لیے جمع ہوں گے، برکتیں نازل فرما، ہمارے سینوں کو کھول دیں اس علم کے لیے جو جس کو ہمیں آپ کے صدقے میں نصیب ہونا چاہیے ان شاء اللہ. تو اہل بیت اتھا علیہ السلام کے ان مصائب کے اندر اور ان بیانات کے اندر شریک ہونا میرے نزدیک بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت بڑا کام ہے، اور آپ الحمدللہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تبھی آپ بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، مختلف جگہوں یہاں یا کہیں بھی اور جاتے ہیں ظاہر. تو سب کی سلامتی کے لیے انشاءاللہ مزید توفیقات کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. خدا تعالیٰ نے جو ہدایت کا نظام ارسال فرمایا ہے اس میں بہت سارے اجزاء ہیں، اس میں کچھ عبادتیں ہیں، اس کے اندر کچھ فلسفہ اور گہری افکار ہیں، اس کے اندر کچھ اس کے اندر عبادات ہیں اذکار اور اوراد کی صورت میں، کچھ جیسے قرآن کریم کی تلاوت. جس بات پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے وہ یہ کہ دین سارا کا سارا دین کسی ایک ہدف کو پورا کرنے کے لیے ہے. ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرتے رہنا چاہیے، میں بھی کروں آپ بھی کریں، طالب علم ہونے کے ناطے میرے لیے ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اپنی زندگی میں ایک ہی جگہ کھڑا رہوں اور میں سمجھتا رہوں کہ میں چل رہا ہوں، یہ نہ ہوتا ہے. اور ایسا بہت ہوتا ہے، ایسا بہت ہوتا ہے، بالکل جسے کہتے ہیں بلا تشبیہ. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جیسے ہمارے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، یہ سب ایجوکیشن کے نام پہ بنے ہیں. اے واقعاً ان میں ایجوکیشن ہوتی ہے؟ کچھ میں شاید کسی حد تک ہوتی ہے، بہت سارا وقت، بہت ساری ریسورسز، بہت ساری ایکٹیویٹیز اس ہدف کو پورا نہیں کرتی. تو اپنے آپ سے مجھے پوچھنا ہوگا کہ میں اپنی زندگی میں دین کے نام پہ جو کچھ کرتا ہوں اس سے میری ترقی میں مدد مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے. تو مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے دین کے نام پر، کئی گھنٹے اس میں لگا دیتا ہے، اچھا جب رات کو سوچتا ہے میرے اندر کیا چینج آئی، تو نہیں نوٹ کر پاتا کہ کیا ہوا. یہ نہیں ہونا چاہیے، ہر دینی کام ہمارے اندر کوئی نہ کوئی چیز بڑھائے، کوئی نہ کوئی ترقی لے کر آئے. اچھا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا ہمیں اس دنیا میں نہیں چاہیے، ہم آخرت میں ثواب حاصل کریں. تو میں اپنے اندر مجھے یہ یقین ہے کہ جو نماز مجھے دنیا میں اللہ سے نزدیک نہ لا سکی وہ آخرت میں بھی نہیں لا پائے گی. پھر یہاں تو خدا سے نزدیک لائے مجھے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. جو نماز مجھے دنیا میں بے حیائی برائی سے نہیں روک رہی وہ آخرت میں کہاں سے مجھے اجر دلائے گی؟ اسی طریقے سے مثلا ہم دعائیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ان سب کا مقصد ہونا چاہیے. وہ مقصد ہمیں حاصل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اگر نہیں ہو رہا نعوذ باللہ تعالیٰ، کہیں ایسا نہ ہم عادت کے تحت کچھ چیزیں کر رہے ہیں اور اس کی ہمیں ایک عادت پڑ گئی لہٰذا ہم کیے چلے جا رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے سامنے چیزیں کلیئر ہوں. اب چیزیں کلیئر ہونے کے لیے کیا چاہیے؟
हमारा मौजू कुछ और है लेकिन हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों को टच करना पड़ जाता है क्योंकि ये उस प्रोसेस का हिस्सा है जिससे हम गुजर रहे हैं। तो मैं चंद मिनट्स में इसको अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहुत ज़रूरी है इंसान को ये पता हो कि मैं किस सिस्टम का हिस्सा हूँ। मुझे याद है मैं जब पाकिस्तान में था क्लास 9th में था तकरीबन ब्लैंक था कि 10th के बाद क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता था। आप कहेंगे मैं आपने कम में होंगे इसलिए नहीं पता होगा, जो भी था मैं ऐसे था और मेरे जैसे बहुत थे। फिर जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था मैं वहाँ जाके बच्चों से पूछता था तुम इस ग्रेड में हो इसके बाद क्या होने वाला है, ज़्यादातर को नहीं पता था। अगर पता भी होता था इजमालन दो चार चीज़ें पता होती थी, बाकी किसी को नहीं पता होता था एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है। जब मैं दीन में आकर देखता हूँ एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ हो रही है। वो क्या है, हमें खुदा ने यहाँ भेजा है, इससे पहले कहाँ थे, जब यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। अच्छा हमारे पास एक सीधा फॉर्मूला है, खुदा से हैं खुदा की तरफ जाएंगे, और भी कोई तफसील है या नहीं है, और भी तो कुछ होगा इसमें कि भाई ये प्रोसेस है क्या, यहां से जाएंगे कहां कहां पे सर उठाएंगे। हम लोग के जहन में सिर्फ एक बात है, यहां मरेंगे मैदान हशर में पहुंचेंगे, इसके बीच में पूरा एक स्टेज है वो बरज़ख, उसको क्यों गायब कर रहे हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को जानने की जरूरत है कि खुदा ने हमारे लिए पूरा एक रास्ता तय करवाया है हमें और एक और रास्ता तय करवाएगा। अब ये वो मौजू है जिसको अगर मैं किसी और मसलन खमसे में अर्ज करूंगा तो पूरा एक खमसा इसके ऊपर लगेगा, लेकिन मैं चारों मिनट्स के अंदर सिर्फ टच करता हुआ चले जाऊं ताकि ये कम से कम जहन में रहे कि भाई यहाँ दास्तान कुछ और है जो शायद हम मिस कर रहे हैं, और उस मिस करने की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो तवज्जो नहीं दे पाते। तो मैं चंद मिनट्स में इसको अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बात आप ये सोच सकते हैं कि जो इंसान जिस जगह पर है, अब मैं अपने जहन में तरद्दुद में हूँ कि मुझे जिस मिसाल को मैं मामूलन दिया करता हूँ इसको समझाने के लिए वो दूँ जल्दी में, तो मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि मैं उसकी इंपॉर्टेंस खो बैठूँ क्योंकि मैं इतनी जल्दी करूँगा, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ शायद फिर भी रिस्क ले लेना चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा अपनी इमेजिनेशन में, शायद आपके पीछे नज़र नहीं आ रही होगी, देखने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई एनालॉग घड़ी सोचें, एनालॉग क्लॉक, ठीक है। उस एनालॉग के अंदर टॉप पे 12 होता है और बॉटम में 6 ऑफकोर्स, ठीक है। अब टॉप से बॉटम में आते हुए आप दो स्टॉप सोच लीजिए, तो पहला होगा 2 के ऊपर और दूसरा होगा 4 के ऊपर, सही है। ये जो टॉप है, अब तक तमसील यहाँ से शुरू हो रही है, मिसाल यहाँ से शुरू हो रही है, ये जो टॉप है इसको सोचने ये खुदा है, इसको सोचें खुदाई मरहला है जहां सिर्फ खुदा है। 2 तक आते आते वो तमाम मखलूक आते हैं जो खुदा से बहुत नजदीक है, सही, उनके अंदर खुदाई नूरानियत बहुत ज्यादा है। जाहिर है खुदा के बाद जो पहली मखलूक है वो नूर है जिसमें मोहम्मद व अली है। दुरूद भेजे मोहम्मद व अली। तो ये वो नूरानियत है, नबी अकरम और अमीर मोमिनीन का एक नूर, अना व आली में नूर इन वाहिद व सायर उन्नास में नूर इन शत्ता, और मैं और अली एक ही दरख्त से हैं। 2 तक आते आते मखलूकात में कुछ, अभी मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा संभाल लीजिएगा, डेफिशिएंसी आई है। डेफिशिएंसी क्या मतलब, वो कर्ब नहीं है, थोड़ा सा कम हो गया, तो मिसाल के तौर पर क्या कहूं उसको, दो तक आते आते मामला फरिश्तों का शुरू हो गया, वो नहीं है जो पहले था, सही। चार तक आते आते थोड़ी सी और कमी आ गई, थोड़ी सी और कमी आई तो क्या हुआ, इनके अंदर अभी भी मैटर नहीं है लेकिन कोई शेप आ गई है। शेप ओनली मैटर की निशानी हो सकती है लेकिन मैटर का प्रूफ नहीं है, शेप किसी और वजह से भी आ सकती है। तो टू पर तकरीबन फरिश्तों की सतह ले लें और ट्वेल्थ से देखिए टू तक वो अजीमुशान हस्तियाँ हैं मासूमीन अलैहिस्सलाम। टू पर मसा फरिश्तों को ले लीजिए और फोर तक आते आते कुछ ऐसी मखलूकात को ले लें जिनके अंदर मादे की मैटर की झलक आना शुरू हुई है, अभी मैटर आया नहीं है। सिक्स मैटर है और ये क्या है, ये हमारी दुनिया है। और दुआ नुदवा में इस दुनिया को कहा दुनिया दनिया पस्त है, कहां की पस्त है, क्योंकि इसमें मादा है, इसमें मैटर है और मैटर की वजह से मैटर की ख्वाहिशात है, मैटर के तकाजे हैं जो इससे पहले नहीं थे। ये कहां है, ये हमारी दुनिया है, यहां पे हम भेजे गए। दुनिया इस एतबार से अल्लाह की नूरानियत से बहुत दूर है लिहाजा दुनिया पस्त है। यहां जो भेजे गए इनमें से कुछ का ताल्लुक पीछे से बहुत शदीद है, कुछ का ताल्लुक पीछे से बहुत शदीद है, तो वो दुनिया में सिर्फ जबरन रह रहे हैं, खुशी से नहीं रह रहे, जिसको इमाम ने मोमिन ताबीर किया और खुतबा हमाम के अंदर उसकी तफसीलात बयान की जिसके आखिर में वो हमाम दुनिया से तशरीफ ले गए। तो कुछ जो रह रहे हैं उनका पीछे ताल्लुक इतना शदीद है कि वो यहाँ पे रहने में बहुत सख्ती में है लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से रह रहे हैं। इस स्टेज में एक खराबी है कि अल्लाह की नूरानियत से बहुत दूर है, इसमें खूबी है। ये सिर्फ 50-60 साल की कहानी है लेकिन यहाँ आप वो अचीवमेंट कर सकते हैं जो आगे जाकर अगर करनी हुई तो लाखों साल लगेंगे। यहाँ 50-60 साल में कोई ऐसी अचीवमेंट हो सकती है जो अगर यहां नहीं की और आगे जाके लेने की कोशिश की लाखों साल लगेंगे। तो ये बोनस स्टेज है, कम वक्त में बहुत ज्यादा तरक्की। इसलिए मौला ने दुनिया को कहा कि ये मार्केट है, इन्ना अल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, अल्लाह ने मोमिनीन से उनका नफ्स और उनका माल खरीद लिया। इमाम फाई मार्केट है, मतजर मतजर औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह इस मार्केट में खड़े होकर अपना नफ्स और अपना माल खुदा को बेचते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, वो दुनिया के अंदर गर्क होकर दुनिया को एक दूसरे को बेचते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी मुश्किल है इसका धोखा है, क्योंकि लोग इसकी रियलिटी नहीं समझ पाते तो वो समझते हैं यहीं रहना है, जबकि जाहिर है कि यहां पर किसी ने नहीं रहना। तो ये दुनिया है, इसके बाद क्या होगा, वही सफर जो वहां से आते हुए नीचे आया था अब यहां से जाते हुए ऊपर जाएगा, वही सफर। तो हम इस दुनिया में हैं, मादे के साथ हैं, मटेरियल बॉडी हमारे पास है, मटेरियल ख्वाहिशात हमारे पास है, हमारा मुकाबला चलेगा। हम में से कुछ लोग कामयाबियां हासिल करेंगे इस दुनिया में रहते हुए, जितना काम करना था पूरा कर लेंगे और फिर यहां से शहीद हो जाएंगे। ये शहीद कि जो गवाही दे देता है कि मैं दुनिया में रहने के लिए नहीं आया था और मुझे जाना ही था। इनमें से कुछ शहदा वो होते हैं जिनकी गर्दनें कटती हैं तो शहीद होते हैं, कुछ शहदा वो होते हैं जिनकी गर्दनें नहीं कटती हैं लेकिन वो शहीद होते हैं। तो वो जो आप एक तसव्वुर रखते थे कि कुछ शहीद ऐसे होंगे जो शायद कत्ल नहीं होंगे और शहीद होंगे, हाँ ये सही है, ये भी हो सकता है। तो बहरहाल ये दुनिया है, यहाँ से हम जाएंगे, उसके बाद हमारा स्टेज आएगा बरजख का, यहां से निकलती है। जैसे हम बरजख में जाएंगे जो हमारे अंदर की कहानी थी अब वो बाहर आ जाएगी। ये दुनिया धोखे की दुनिया है, यहां बहुत सारी चीजें चेहरे के पीछे छुप सकती हैं। इसके बाद जो दुनिया है उसमें कोई धोखा मुमकिन नहीं है, यहां सारे धोखे मुमकिन है। लिहाजा मकर जो काफिर कर सकता है वो यहां कर सकता है, आगे नहीं कर सकता, यहां हो सकता है आगे नहीं है। वो जो हौसला माफिस सुदूर का जिसके ऊपर बयान हुआ वो ऐसी एक कहानी बरज़ख से शुरू हो जाती है। जो अंदर छुपा होता है बाहर आ जाता है। लिहाजा जिन लोगों के अंदर बरज़ख़ को देखने की ताकत होती है वो इस दुनिया में इंसानों के साथ ज़िंदगी गुजारने में मुश्किल में फंस जाते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी रियलिटीज़ उनको नज़र आ रही होती हैं जिनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो वो जब यहाँ से निकलते हैं बरज़ख़ में जाते हैं, बरज़ख़ में जाने के बाद कितना रहना है कितना नहीं रहना है पूरी एक कहानी है, पूरा एक घंटे से तो बहुत आसानी से बरज़ख़ पे निकल जाएगा अगर उस पर हम टच करने पे आए। कुछ कुछ किस्मत ऐसे होते हैं जो यहाँ पे रहते हुए दुनिया के असाइनमेंट को भी निपटा देते हैं और उस असाइनमेंट को भी निपटा देते हैं जो बाकी लोगों ने बरज़ख़ में जाके निपटाना था। ये बहुत अच्छे लोग हैं, तो ये मरते हैं और बरज़ख़ में इनका कोई स्टे नहीं होता क्योंकि अपना काम कर चुके हैं। तो रिवायत के मुताबिक ये मरते हैं बरज़ख़। अगर मैं बरज़ख़ को एनालॉग घड़ी की मिसाल में कहाँ पे लूँगा, एट बरज़ख़ के बाद महशर है, मैदान हशर। हम लोगों की गलतियों में से गलती है हम मौत के बाद सीधा हशर लेते हैं। आपके पास बरज़ख़ है, बहुत ख़तरनाक जगह है बरज़ख़ एक लिहाज से, अभी मैं उसके ऊपर अर्ज ना करूँ वरना दास्तान लंबी। महशर, अब महशर आपको मालूम है बड़ी ख़तरनाक जगह है, क्या होगा किस तरीके से होगा। महशर के बाद अगला मरहला है पूरे सराब, महशर से मुतसर है। ये अभी 8 to 10 का जर्नी चल रहा है, 10 तक आते आते अब वो दुनिया शुरू हो गई जिसको हम आलम अक्ल कहते हैं। इसको आलम अक्ल कहते हैं, इस अक्ल का ताल्लुक इस अक्ल से नहीं है, ये अकल नूरानियत के मतलब में है। आप इसको आलम नूर भी ताबीर कर सकते हैं, वहाँ सिर्फ नूरानियत है। जैसे वहाँ के सफ़र में जब नीचे आ रहे थे तो वो जगह कौन सी थी, टू, सही। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल होने की कोशिश करता हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगता। 12 इलाही मनसब, इसको कहते हैं लाहूत। 2 नूरानी मनसब, इसको कहते हैं जबरूत। और 4 यहाँ तक आए तो क्या कहेंगे इसको, मलकूत। 6 इसको कहते हैं नासूत। लाहूत, जबरूत, मलकूत, नासूत, ये हाफ सर्कल डाउन साइड। हाफ सर्कल को अरबी में कहते हैं कौस, नीचे आने को कहते हैं नुजूल, इसे कहते हैं कौसे नुज़ूल, सही है। और जब हम वापस जाएंगे इसी हाफ सर्कल को उसी तरतीब से लेके वो वापस जाएंगे, अगर हम खुशकिस्मत हुए, नासूत से निकलेंगे मलकूत में बरज़ख़, फिर महशर शुरू हो जाएगा कि जो एक्चुअली हमें लेके जाएगा जबरूत की तरफ, और फिर जबरूत से निकलकर लाहूत की तरफ, ठीक है। वो हाफ सर्कल कौस कहलाता है, नीचे आने को कौसे नुज़ूल कहते हैं और ऊपर जाने वाले को कौसे सऊद कहते हैं, सही है। ये 2 कौस है, काबा कौसैन औ अदना, एक मतलब ये है, एक मतलब ये है। आपके पास बहुत लंबा सफर है और आपको इसी 50-60 साल में इस लंबे सफर के लिए सारा सामान उठाना है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे लोग इस बाजार में सिर्फ दुनिया के लिए जी रहे हैं, जबकि वो इस दुनिया में के लिए जीने के लिए यहाँ नहीं भेजे गए थे, वो कहीं और जाने के लिए भेजे गए थे। ये गलती है हमारी, ये सिस्टम मैंने कहा आपको जल्दी से अर्ज कर दूँ, तो अगर नामों में आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं नाम 4 जल्दी जल्दी ले लेता हूँ। इसको चार अवालम भी ताबीर करते हैं, अब तो नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और नाम में थोड़ा सा अगर कुछ लोग सीख लेते हैं तो बाज़ोकात ना भी जानते हो तो लोगों के सामने मोटे मोटे नाम लेकर अपनी इल्मी काबिलियत जमाने की कोशिश करते हैं, तो मैं इसलिए ज़्यादा नामों के ऊपर इसरार नहीं करता। ये 4 लोग सीख लेंगे फिर कहीं बैठेंगे तो पता है जबरूत किसे कहते हैं, मलकूत किसे, खुद भी नहीं पता होगा लेकिन कहेगा। तो इसके खातिर नामों वामों को छोड़ दीजिए और फोकस करें काम क्या है, काम क्या है, सही। ये और समरी में वो है जिस सिस्टम में हम बैठे हैं, इसमें हम बैठे और यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पे हमारी मुश्किलात में से एक मुश्किल ये है कि हम बहुत सारी चीजों में जाहिर को संभालते रहते हैं, बातिन को खो बैठते, ये हमारी मुश्किल हो जाती है। जाहिर को संभालने में इतना वक्त लगा देते हैं, बातिन हाथ से निकल जाता है। और थोड़ा सा इस दुनिया से निकल गए तो फिर जाहिर की कोई खबर है क्या? नहीं, जाहिर खत्म हो गया, सिर्फ बातिन है, सिर्फ बातिन है। लिहाजा कल तफसीर जो हौसला माफी सुदूर में आस किया था कि अगर किसी का बातिन इन्वॉल्व हो जाए दुनिया के अंदर, ये बेचारा बाहर निकल के फकीर और अंधा है, क्योंकि जो ये लाया है उसकी वहां पे जगह ही नहीं है, ये फकीर हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पर अगर किसी की ओनरशिप यहां पर मिसाल के तौर पर 10 बिलियन हो, लेकिन अहले दुनिया हो, मरने के बाद क्या है? ये फकीर महज, फकीर महज है। तो इसने पूरी जिंदगी गुजारी थी 4 घर बनाने पे, बेचारा फकीर है, ये भी नहीं पता कि इसको हाथ पांव मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, ये भी नहीं पता कि इंसान की शक्ल में उठेगा या जानवर की शक्ल में उठेगा, ये भी नहीं पता। तो ये सब तब्दील हो जाएगा। और खुदा तआला ने फरमाया एक और आयत करीमा में, यालमो खायनतल आयुन वमा तुख्फिस सुदूर, खुदा आंखों की खयानत को भी जानता है और जो सीनों में छुपा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फरमा रहे खुदा ने बताया कि देखो, तुम ये नहीं सोचना तुम कुछ करोगे और तुम भूल गए तो हम भी भूल गए, नहीं, तुम भूल जाओगे हम नहीं भूलेंगे, हमने याद रखा हुआ। ये कुरान करीम में ऐनन यही अल्फाज क्या है, तुम भूल गए हो हमने याद रखा हुआ, और वो नसीब में आने वाला है सामने। इसलिए अंदर की बहुत हैसियत है। अब मैं मौजू से मुतसिल करता हूं, इतना कुछ अर्ज करने के बाद दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक मशहूर आय करीमा मैंने आज किया, कुरान करीम का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो हमें हमारे लिए मशहूर नहीं है, हम नहीं जानते क्योंकि हमने कभी इतना ज्यादा मुताला नहीं किया, लेकिन कुछ हिस्से हैं जो मशहूर भी हैं। तो मिसाल के तौर पर वो आय करीमा मशहूर है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। इसका हम एक मतलब लेते हैं लेकिन उस मतलब में एक गहराई आ सकती है, वो भी अर्ज करता हूँ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, अब मैं चूंकि जरा ऊंचाई पे हूं ना तो मुझे खाली जगहें नजर आ रही हैं, सही है। अब चूंकि आप नीचे बैठे हैं आपको शायद वो खाली जगह नजर ना आ रही हो, तो अगर आपके आगे कोई खाली जगह है और तो फिर आप जिम्मेदार हैं उन लोगों के जो मजलिस में नहीं बैठ पा रहे, फिर आप जिम्मेदार। आप अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से तशरीफ फरमा रही है और जो आपसे दरख्वास्त हुई आपने उसके ऊपर अमल किया, खुदा तआला जज़ाए खैर नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। और मैं कल भी शायद कल या परसों भी अर्ज किया था कि एक बात सुकून से अपने जहन में रखिएगा, देखिए हम जैसे लोग 40 साल हो गए तालिब इल्म में, 40 साल से ज़्यादा हो गए, तो हम सबको एक बात समझ में आ रही है, वो ये कि इस निज़ाम में कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाने वाली, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होगी। अब 40 साल में कम से कम इतनी बात तो समझ में आ गई है कि ज़ाया कुछ नहीं होने वाला। तो मसलन अगर आपने कोई सख्ती उठाई है, वो सख्ती भी खुदा ने देखी है, वो नोट कर रहा है, सही। तो आप भी किसी सख्ती से परेशान मत होइएगा कि मसलन मैंने सख्ती उठाई, किसी ने मुझे कोई रिगार्ड्स नहीं दिया, किसी ने मुझे कोई एक्नॉलेज नहीं किया, इसको भूल जाए। इन किसी इंसान के एक्नॉलेजमेंट से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और जिसकी एक्नॉलेजमेंट से मिलने वाला है वो मिस नहीं कर रहा है, वो मिस नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। तो मिसाल के तौर पर हम इसका ऐसे तर्जुमा करते हैं जब सियासी मैदान में, तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी कौम को अपनी हालत तब्दील करनी है तो दूसरी कौम उसके लिए नहीं करेगी, खुद उसको अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा। मैं इसकी सियासी मफहूम पर अभी काम नहीं करूँगा, मैं इसके एक और पहलू पे काम करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि माशरा तब्दील हो तो पहले आपको अपने नफ्स को तब्दील करना होगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, नफ्स। अगर कोई कौम ये चाहती है, उस जमाने को देखें जब सैयदुश्शहदा की नुसरत करने वाले इतने से थे, और ज़हूर के ज़माने को देखें जब सब इमाम की नुसरत करने के लिए तैयार हो रहे हैं, अगर ये यहाँ से निकल के वहाँ आना चाहते हैं तो पहले अंदर तब्दील करना होगा। वही हो सला माफिल कबूर, वही आलम खायन चलाने व मा तुख सदूर, वो सब यहीं पर है। अगर ये अंदर से कुछ तब्दील हो गया अल्लाह की बंदगी की समझ, तो सोसाइटी भी तब्दील हो जाएगी। कम से कम ये कि आपके ऊपर सरजनिश नहीं होगी कि ये क्यों था ऐसा, आप पे सरजनिश नहीं होगी क्योंकि आपने अपने आप को अंदर से तब्दील किया। तो सारा जो काम होगा वो ये होगा कि अब अंदर से तब्दील क्या होना है, ये एक मुश्किल है। अंदर तब्दील होना क्या है? चलिए मान लिया सब लोगों ने मिसाल के तौर पर कि ठीक है हमें अंदर से एक तब्दीली लानी, क्या तब्दीली लानी? अब मैं एक मिसाल अर्ज करता हूँ, तकरीबन हर चार पांच दिन हफ्ते के बाद ये केस आना ही आना है कि लोग ये कहेंगे कि ये हुआ है। वो क्या होता है साहब, आप किसी को सोचें वो इबादतें कर रहे हैं, कुछ अरसे इबादतें करते हैं, लगता है जैसे डेवलप होना शुरू हो रहा है, अचानक कोई हादसा आता है जो गुनाह नहीं सोचा था वो हो गया। मिसाल के तौर पर एक दिन गुजरा, आय करीमा पढ़ी, कोई कुरान करीम पढ़ा, बड़ा लुत्फ आया, बहुत मजा आया। अब दूसरे दिन इंतजार कर रहे हैं कि मैं पढ़ूंगा, दूसरे दिन कुछ ऐसा हादसा हुआ कि उस दिन कुरान पढ़ना ही नसीब नहीं हुआ। एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना मुझे कुछ समझ में नहीं आता, वो टीचर है, उन्होंने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आता, जब मैं किसी क्लास में बैठकर बच्चों को अल्लाह के बारे में कोई बहुत अच्छी बात बताता हूं, अगले दिन मेरी फजर की नमाज क्यों खजा हो जाती है? ये कह रही मुझे समझ में नहीं आता, मैं गुनाह नहीं कर रहा हूं, तो सवाब कर रहा हूं, तो ये फजर क्यों खजा होती है उसके अगले दिन? अच्छा, ये बहुत रूटीन में लोगों के साथ होता है, थोड़ी डेवलपमेंट होगी फिर दोबारा नीचे, फिर बेचारे जोर लगाएंगे, मेहनत करेंगे, फिर दोबारा थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करेंगे, फिर कोई सानहा, फिर दोबारा नीचे। अच्छा, बाज़ लोगों के दरमियान, बाज़ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, एक दफा नीचे गए, इतना नीचे गए कि पता ही नहीं चला गया कहां बंदा, पता ही नहीं चला। मैं कभी कभी रेफर करता हूँ बहुत माजरत के साथ, मैं हाथ जोड़ के भी कहूँ, अभी कुछ लोग मुझे बता रहे हैं, वो ना आपकी बातों से लोग बहुत ज्यादा बाज़ खुश नहीं है, तो मुझे पता है क्यों खुश नहीं होंगे, मुझे भी पता है, मुझे भी बुलाखिर 20-22 साल हो गए बोलते बोलते, तो मुझे पता है कि कौन खुश नहीं होगा कौन खुश होगा। लेकिन मैं बता दूं, मैंने जो अपने सिर्फ खुद देखे हैं केसेस, उनमें बता रहा हूं कि नमाज पढ़ने वाला शख्स, नमाज शब पढ़ने वाला, कुरान पाबंदी से पढ़ने वाला, ठीक है, खुद आकर मुझे कहता है मौलाना मैं ऐसी मुसीबत में फंस गया। क्या मुसीबत? कहना मौलाना ऐसा था, मैं एक स्टोर पे काम करता हूँ, वहाँ शराब बेचता हूँ, जो लोग पीकर क्रेट पे छोड़ देते हैं उनका झूठा मैं पीता हूँ। एक जमाने में नमाज शब पढ़ता था, ये मैंने देखा है, कहानी नहीं सुना रहा, मुझे बंदे ने खुद आके बताया है ये हुआ है, और ऐसे पता नहीं कितनी चीजें हुई हैं। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा है? दो चीजें, किसी ने मुझसे कल परसों कहा था वहां को थोड़ा सा टिप्स दें का काम कैसे करना है, हाँ दो चीजें होती हैं, इन दोनों का अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में, आप हौसले से सुन रहे हैं, तहम्मुल के साथ सुनते रहेगा, हमारी कुछ बातें बुरी लगे ना छोड़ दीजिएगा, जो अच्छी लगे उसको मान लीजिएगा, खत्म हो गया मामला, और क्या होगा, चार बातें बुरी लगेंगी ना, एक बात अच्छी लगेगी वो अच्छी को मान लो, बाकी चार में मुझे मेरे खुदा पे छोड़ दो, ये खुदा इससे समझ लेगा, ठीक है। बाकी अल्लाह मालिक इंशाअल्लाह। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। दो वजूहत होती हैं। नंबर एक, दो या तीन दिन पहले मैंने अर्ज किया था कि हमारे आमाल का एक स्टोरेज है हमारे अंदर, वही स्टोरेज है, वही प्रोसेसर है, वही मॉडेम भी है ऊपर से कनेक्ट करने के लिए। ये गार्बेज होता है इसके अंदर, करप्ट होता है, सबका सत्यानाश मार देता है, सही है। इसको कहते हैं कल्ब। जितना भी कुरान में और हदीस में कल्ब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अबव 80% इसमें है, इस माना में। इसका काम क्या है? ये आमाल को स्टोर करता है। बुरे हुए तो फिर मामला खराब हो गया, अच्छे हुए मामला बहुत अच्छा हो गया। स्टोर करता है, फैसलों को प्रोसेस करता है, और जो स्टोरेज है वो इसके ऊपर इफेक्ट करता है। नंबर थ्री, ये मॉडेम है, ये हायर रियलिटी के साथ कनेक्ट करता है, वहां से इल्म रिसीव करता है, नूरानियत इल्म रिसीव करता है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी के अंदर ये करप्ट हो और उसको नहीं मालूम और वो इबादतें किए जा रहा है, सही है, जब एक थ्रेशोल्ड के ऊपर पहुंचेगा जहां से ये टेक ऑफ की कोशिश करेगा, ये गार्बेज इसको पकड़ के नीचे घसीटेगा। ये वो जगह है जहां इसकी फजर कजा होनी है। तो कल रात इसने एक अच्छा काम किया है, उस थ्रेशोल्ड पे आ गया कि अब ये जरा सा टेक ऑफ करे। जैसे ही टेक ऑफ करने लगेगा, वो जो पिछला लोड है पुल बैक करेगा, थड़ से जमीन बिगड़ेगा, और इसको याद आएगा कि मैं कुछ नहीं हूं। अकलमंद हुआ तो ये फौरन एक काम करेगा, वो क्या, इसको समझ में आना चाहिए कि मेरे स्टोरेज के अंदर करप्शन है। ये और कहां नजर आता है? बहुत तेजी से जाना पड़ेगा। और कहां नजर आता है? मैं कुछ लोगों के साथ बात कर रहा हूं, अचानक कोई ऐसी बात करता हूं जो बहुत सब स्टैंडर्ड है। ये कहां से आई मेरे दिमाग में? ये दिमाग में नहीं आई है, ये जो अंदर गार्बेज था वो मेरे कंट्रोल से बाहर निकलकर पॉप अप कर रहा है, ये हुआ है। दो बातें, तीसरी बात, आप एक ख्वाब देखेंगे कभी, मैं ख्वाब वाला बंदा नहीं, कोई मुझे ख्वाब ना सुनाए बाद में, कोई ख्वाब देखेंगे जिसके अंदर आप देखेंगे कोई ऐसा मैस क्रिएट किया है ख्वाब में जो आप जिंदगी में सोच ही नहीं सकते। ये आपने ख्वाब में मैस क्यों क्रिएट किया? ये वो आपका वो अंदर वाला गार्बेज है, वो सामने आया। चौथी जगह, आप ज़ियारत पे गए, जरी के सामने खड़े हैं, अब आपको कोई गलत चीज़ नहीं सोचनी चाहिए थी और दिमाग में आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? जरी के नज़दीक आने से ऊपर के गुबार को हटने का मौका मिला है, अंदर का गंद ऊपर आ गया है। आम हालत में नहीं आता था, अब आया है। हाँ, इन चारों सूरत हाल में करना क्या है? आपको इस्तग़फ़ार करना है, टाइम मैं आपको बता चुका हूँ, सहर के वक्त इस्तग़फ़ार करना है कम से कम 70 मरतबा, पुराने गुनाहों को सोचकर इतना करना है जिंदगी में कि जैसे आपकी लाइफ टाइम जॉब है। इससे क्या होगा? पिछला गार्बेज अगर मजीद आपने उसमें लोड नहीं डाला हुआ है, अगर मजीद उतना ही बढ़ा रहा हूं तो फिर कहां से खत्म होगा? फिर अगर मैं एक और बात अर्ज करूं, तो कोई मजीद बढ़ा रहा है उसको इस्तग़फ़ार की तौफीक भी नसीब नहीं होने वाली है, गारंटेड बता रहा हूं, क्योंकि नीचे वाला जो है वो पुल बैक करेगा और ये इस्तग़फ़ार की तौफीक भी छीन लेगा, सही। यहाँ इसको अगर ऐसा हो किसी के साथ तो उसे क्या करना चाहिए? उसको फौरन सईद शुहदा से तवसुल करना चाहिए। इन हुसैन मिसबाहुल हुदा सफीनतुन नजात, मौला से नजात की तलब करनी चाहिए। तो इमाम तौफीक नसीब करेंगे, इस्तग़फ़ार सही वक्त पे करेगा, सही तवज्जो से करेगा, अपने उस गार्बेज को रिमूव करने में कामयाब हो जाएगा। ये एक रीज़न है, एक रीज़न मैंने आपको और आपकी खिदमत में अर्ज करना है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, मुझे थोड़ा बहुत एहसास हो रहा है कि शायद मैं कुछ ऐसे तरीके से कह रहा हूँ जिससे कुछ लोग थक रहे होंगे, तो अपनी थकावट को दूर करने के लिए दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद दूसरी वजह उस आदमी की जो बेजायर कुछ अमल अंजाम देता है लेकिन हमेशा पुल आउट पुल बैक हो जाता है, वापस आ जाता है। क्यों होता है ऐसा? एक रीज़न दे दिया, उसकी चार वजूहत बता दी, दूसरा रीज़न इसने अकायद पे मेहनत नहीं की हुई, इसने तौहीद को नहीं समझा हुआ, इसके पास नबूवत के ऊपर कोई दलील नहीं है, इसने सुने सुनाए पे अमल किया। अकायद की ये गलती इसको कभी तरक्की नहीं पाने देगी, कभी नहीं होने देगी। तो अगर किसी बंदे को यह एहसास हो कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं फिर धड़ाम से नीचे गिरता हूं फिर ऊपर जाता हूं फिर नीचे जाता हूं, तो मैं फौरन उससे कहता हूं दो काम करो। नंबर एक, यानी अपने लिए ये कहता हूं, नंबर एक पहले तो जाकर इस्तगफार को पाबंदी से करो, मस्जिद को ना मत बढ़ाओ, इस्तगफार पाबंदी से करो। नंबर टू जाके अपने अकायद को दोबारा से स्टडी करो, अकायद की कोई किताब ले लो, उर्दू में इंग्लिश में कहीं पे भी थोड़े बहुत जिसमें दलाइल हो, सॉलिड कोई राइटर हो जिसने फजूल कोई बात ना लिखी हो, अच्छे अकायद उसको स्टडी करो, तौहीद पर खुद दलील लेकर आओ। अच्छा कोई मुझसे पूछता है मौलाना हम पढ़ते हैं दलील ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं होती, यही करो अब तौहीद पर दलील दो और फिर खुद ही उसको क्रिटिसाइज करो, फिर अपने क्रिटिसिज्म का खुद ही जवाब लेकर आओ। कहीं फंस जाओ किसी बड़े से मदद ले लो कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है इसका जवाब क्या है। यही काम पांचों अकायद के साथ करो। जब तक किसी इंसान के अकायद की बुनियाद मजबूत नहीं होती, दुआएं आमाल इबादत उसको बुलंदी भी नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि अकायद आपकी असली रूह बन रही होती है। बरज़ख अखलाक की दुनिया है, अकायद महशर की दुनिया है। जो गलत अकीदे वाला होगा वो महशर में बहुत मुसीबत में होगा, और जो गलत अखलाक वाला होगा वो बरज़ख में बड़ी मुसीबत में होगा। सही, तो आपको अपने अकायद को मजबूत करना होगा और सॉलिड चाहिए, दलील चाहिए, वो पैरवी नहीं चाहिए। अब्बा ने कहा था इसलिए, मुझे कोई एक दफा मजलिस में लेके जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि उसने कुछ बातें कहीं जो मुझे लगा रूटीन में नहीं है, तो मैंने पूछा भैया आप कौन हो, कहना मौलाना सही तो मुझे भी नहीं पता, मैं अपने वालिद से पूछ के बताऊँगा। ये अकायद नहीं है, ये अकीदा नहीं है। अकीदा आपको पता होना चाहिए, आपके पास तौहीद पे दलील हो, आपके पास नबूवत इमामत के ऊपर दलील हो, कन्विंसिंग दलील, बिलावज की समेटी हुई दलील नहीं हो, आपने अल्फाज में किसी को खामोश करने के लिए कह दिए, नहीं, आपके खुद का दिल उस पर मुतमईन हो एक एक चीज के ऊपर, वरना क्या होगा। एक मिसाल अर्ज करता हूं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, और ये बहुत होता है, बहुत होता है। वो क्या, कोई बंदा है जिसने अकायद पे काम नहीं किया हुआ, अकायद पे काम नहीं किया हुआ, उसे नहीं पता बरज़ख में क्या है, उसे नहीं पता ये जो मैं दुआएं पढ़ रहा हूँ इससे क्या होने वाला है, पढ़े जा रहा है नमाज शब पढ़े जा रहा है, उसको किसी ने कहा नमाज शब में रो लिया करो अच्छा है, बड़ी जान मार के रोता है, एक दिन नमाज शब पढ़ रहा है, कोई दुआ पढ़ रहा है, बहुत रो रहा है, अचानक शैतान पीछे से आवाज देगा रो लिए तो क्या हुआ। अब ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे गर्म तवे के ऊपर किसी ने पानी डाल दिया, इसे कुछ नहीं पता क्या आगे था, क्या कोई जवाब ही नहीं है। आज से इसकी वो सारी तवज्जोहात खत्म, अकायद पे काम नहीं किया है, कंट्रोल पे काम नहीं किया है, बहुत इबादत गुजारी की है, एक मंजर आएगा गुनाह का मशगूल हो जाएगा, महीनों के लिए फारिग, महीनों के लिए फारिग। अब ये फिर दोबारा कई महीने दम लगाएगा इसी स्पॉट तक दोबारा आने में। आप कहेंगे मौना इस तरह तो काम बहुत मुश्किल है, आपने क्या समझा था कि आसान है, आप हमें समझे थे आसान है, आसान होता तो खुदा तआला ने क्यों कहा था कि खलीलुम मिन इबादी अश्शकूर, मेरे बहुत कम बंदे शाकिर हैं, क्यों खुदा ने कहा। तो ये काम मुश्किल है। अब मैं एक बात और अर्ज करता हूं, इस तैयारी के बगैर लश्कर इमाम नसीब होने वाला है। इस तैयारी के बगैर दो रकत अच्छी नमाज नहीं मिलने वाली, लश्कर इमाम कहाँ? अब कहीं मौना बहुत मुश्किल हो गया, क्या समझ लो 1100 साल बिलावज में इंतजार हुआ है, ये क्या चंद नारे लगाने वालों का इंतजार हुआ था? 1100 साल में नारे लगाने वाले नहीं थे हमारे पास क्या? या मसलन दुआएं पढ़ने वाले नहीं थे? कौन नहीं था? सब था। तो इंतजार किस बात का है? इंतजार इस जामियत का है, सब चीजें जमा, इसका इंसान, ये वो टास्क है जिसमें आप आए हैं, ये वो जिसमें आप बुलाए गए। अच्छा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? आप एक मैसेज के कैरियर होंगे, किसी और को पहुंचाएंगे, वो कहीं पहुंचेगा। अगर आपने नहीं उठाई ये जिम्मेदारी, आप सिर्फ कैरियर रह जाएंगे, इसे उठाएंगे कहीं और देंगे, वो ये काम करेगा। कुरान करीम फरमाता है, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुनु अम्सालकुम, अगर तुम लोग पीछे रह जाओगे खुद अब कोई और कौम लेकर आएगा, तुम्हारी तरह नहीं होंगे, वो कहीं और काम करेंगे। इतना अर्ज कर दिया, एक पॉइंट इसमें और इजाफा करता हूं और वक्त इख्तिताम पर हो गया। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अपनी जिंदगी को, आप अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजों को जिंदगी की तब्दीलियों से सीख सकते हैं, बहुत सारी तब्दीलियों, बहुत सारी चीजों को जिंदगी की तब्दीलियों से। मिसाल के तौर पर कोई कोई ये कह मोरा, अब ये जुमला बहुत सुनते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा सुनते हैं, अगर हम होते ना ऐसे असाध्या के पास, उस्तादों के पास, हम पता नहीं कहाँ होते। ये समझ रहे हैं जैसे हिदायत देने के लिए जुग्राफिया की जरूरत है, जबकि खुदा ने कुरान करीम में फरमाया था कि हिदायत देने वाला खुद खुदा है। तो क्या तुम ये समझ रहे हो चूंकि हमारा स्टैंप यहाँ की है तो खुदा अपना काम नाउज़ुबिल्लाह ताला यहाँ अच्छा नहीं करेगा? किसने कहा? ये बहानेबाजी है। अगर यहां पर भी अपना काम अच्छा कर लो, खुदा यहां पर हिदायत दे देगा, काम अच्छा करो। हाँ, यहां पे थोड़ी मुश्किल ज्यादा होगी, कतन ज्यादा होगी, किसी और जगह शायद थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, लेकिन क्या जो वहां के सब रहने वाले हैं वो सारे कर लेंगे और यहां का रहने वाला कोई नहीं कर पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। काम ढंग से करो, सब कुछ हो जाएगा। तो अहसान मुहतरम, हम इस रास्ते के ऊपर दावत पे हैं और इसको हमें बढ़ाना है। आज मैंने बहुत कुछ सोचा था अर्ज करने के लिए, लेकिन ज़ाहिर है अब हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है। कल इंशाअल्लाह अर्ज करने की कोशिश करेंगे। कल भी कहा था कि हज़रत आदम के बेटों से एक वाक़या सीखना है, जिसका टाइम अभी नहीं रहा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मामले से, वाक़े से एक बात सीखनी थी, उसका भी टाइम नहीं रहा। कल इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वहीं से शुरू करूँ। आप लोगों के साथ एक मुश्किल है, आप में से आधे लोग आधा वक्त गुजारने के बाद आते हैं, आधे नहीं थोड़े कम, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, वादा कर गया थोड़ा सा, आधे से थोड़े कम वक्त गुजारने के बाद आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं यहाँ बैठे हुए भी मूवीज बनाते रहते हैं, क्या जरूरत है? यहाँ आए हो इस काम के लिए? जो काम के लिए आए हो वो करो, क्यों अपना वक्त ज़ाया करो? फोकस, फोकस पढ़ो, फोकस पढ़ो। अब आप मिसाल के तौर पर, मुझे अपने तौर पे सोचना होता है कि भाई अभी 1/3 इतनी देर के बाद आएंगे तो मैं उतनी देर तक कोर टॉपिक शुरू नहीं कर सकता, आप वक्त ज़ाया कर रहे हो अपना। फिर मैं वक्त ख़त्म हो जाता है, फिर मातमदारी भी होनी है, मगरिब का वक्त भी आता है, फिर जब मगरिब का वक्त आता है कोई मेरे पास आके कहता है मौलाना मगरिब अजान का वक्त हो गया, तो भाई तुम देर से आए क्यों थे? तुम लोग थोड़ा पहले आओ ताकि सही वक्त के ऊपर सही काम हो जाए सारा, तो इस वजह से सारा बैलेंस खराब होता है। और ये मत सोचना दिन बहुत है, 5 दिन गुजर गए, ये चंद दिन है बस, गुजर जाएंगे, सब गुजर जाएगा। फोकस, फोकस है। हम भी ख्याल करते हैं, हम नहीं चाहते आपका वक्त आए, हम पता है हम खुदा के सामने जवाब देना पड़ेगा, बिलावजह की बातें नहीं करनी चाहिए मुझे। तो आप भी फोकस रहें, इंशाअल्लाह पाबंदी से आए ताकि हम सही टाइम पे सही काम को शुरू कर सकें और इंशाअल्लाह हम कर सकें। सारा हदफ क्या है? सारा हदफ यह है कि सैयदुश्शोहदा ने एक निदा दी है। सैयदुश्शोहदा ने असर आशूर क़यामत तक आने वाली तमाम इंसानियत को अपनी तरफ बुला लिया है। हल मिन नासिरिन यंसुरुन, है कोई जो मदद के लिए आए? हमें साबित करना है कि मौला होते तो मदद करते, ये साबित करना है किस तरीके से। और आज का दिन मंसूब है उन बीवी के दो बच्चों के लिए जिनकी एक माना में अगर कहूं दुनिया मदयून है, दुनिया मदयून। तीन खवातीन इतनी बाअज़मत हैं, इंसानियत उनकी मदयून है, इंसानियत उनकी मदयून है बिला शक व शुबा। बीबी खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, बीबी सैयदा ताहिरा, बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन। दुरूद बे मुहम्मद व आलिह सल्लल्लाहु अलैहि। ये पूरी दुनिया इन तीनों बीवियों के सामने सर झुकाने पे मजबूर है, सर झुकाने पे मजबूर है। और बिल अख़स जो बीवी ज़ैनब कुबरा खामखा, अल्लाह इंसान किस तरह सोचे। सब्र का जो मकाम है, कुर्बानियों का जो मकाम है, और बीवी वो हैं जो, मैं चंद जुमले बस मसाइब के अर्ज करूंगा और मोहम्मद के लिए, भी वो हैं जो शब आशूर बच्चों को तैयार कर रहे हैं। हर खेमे में बीवियां अपने अपने असासों को तैयार कर रही थी, और बीवी अपने खेमे के अंदर अपने दो लख्ते जिगर तैयार कर रही हैं औनो मोहम्मद, और उनको कह रही हैं कि बेटा ऐसा ना हो गैरे बनी हाशिम तुमसे पहले चले जाए, जान भी कुर्बान करना और पहले कुर्बान करना, और तुम्हें तुम्हारी माँ खुदा हाफिज कह रही है। नहीं मालूम ये कौन सी माएँ हैं, ये किस जिगर और किस हिम्मत के साथ आई हैं। एक वो माँ है जो अपने 6 माह के बच्चे को भेज रही है, और एक ये माँ है अपने जवानों को भेज रही हैं, और वो दोनों सैयदुश्शोहदा की खिदमत में आए और कुर्बानी पेश करने की इजाजत चाहिए। अब सैयदुश्शोहदा औनो मोहम्मद को इजाजत कैसे दें? बार बार सोचते हैं बीबी ज़ैनब कुबरा को और इन दो जवानों को कि इनकी लाशें आएंगी। और अज़ो बस एक मौका था, औनो मोहम्मद मैदान जंग में गए। हमारे पास अजीब रिवायत है इस मामले में, हमारे पास रिवायत है कि अगर एक भाई दुश्मन के नरगे में घिर जाता था तो दूसरा भाई उसकी मदद के लिए आता था। मजलूमियत के अलावा एक बात को जहन में रखिएगा, ये औलाद औलाद अली है, औलाद अली है। ये शुजात के माहिर हैं, इन्होंने शमशीर जनी के जौहर दिखाए हैं, इन्होंने दुश्मनों को उनकी सख्तियों पर पहुंचा दिया। और एक मौका आया जब जमीन पर गिर गए और सैयदुश्शोहदा लब के और अपने इन बच्चों के लाशों को उठाकर लाए। अब जो बीबी ज़ैनब कुबरा की तरफ बढ़ने लगे तो फरमाया भाई जो मैंने कुर्बान कर दिया है उसको आप पर कुर्बान कर दिया है। बीबी ज़ैनब कुबरा ने अपने इस वादे को निभाया है, अपने इस वादे को निभाया है। आज अगर मैं सिर्फ रिवायतों का सहारा लेकर आगे बढ़ूं, ये बीबी वो बीबी हैं जब मकतल के नजदीक से गुजरी अपने बच्चों के लाशें भी नहीं गई। मैंने कितनी आसानी से जुमला बोल दिया। अब मैं दोनों हाथ जोड़कर एक बात कहूंगा, अगर आपने किसी बच्चे का लाशा उठाया होता तो आपको ये जुमला समझ में आता कि माँ अपने बच्चों के लाशें पर नहीं गई, अपने भाई के लाशें पर गई और जाके वहां गिरिया फरमाया। और फिर वो दिन आया जब शाम के जिंदान में सर वापस भेजे गए, और पूरी दुनिया ने एक अजीब मंजर देखा कि हर बच्चे के हर जवान के सर पर कोई माँ बेटी है, लेकिन दो जवान सर ऐसे हैं इन पर कोई माँ नहीं है। इनकी माँ सैयदुश्शोहदा के सरे अक़दस पे गिरिया कर रही है, بس عزیزو آخری جملہ عرض کروں گا، بی بی نے اتنا صبر دکھایا، اتنی قربانیاں دیں، اپنے بھائی کا ہمیشہ ذکر کیا، لیکن عزیزو ایک دن آیا جب بی بی زینب مدینے واپس آ گئی، اس گھر میں آئی جس کے در و دیوار سے اور وہ محبت یاد آتے تھے، اب تک صبر کرنے والی بی بی زینب بوٹ بوٹ کے رو پڑی، پروردگار جن جن ظالموں نے اہل بیت اطہار پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، خدا بندہ جن قاتلوں نے آج کے دور کے دوست بزرگوار سیدوں کو شہید کیا، پاک پروردگار ان قاتلوں ان کے لشکروں کو نیست و نابود فرما، پاک پروردگار ہمیں ہم اپنے امام کی نصرت کے لیے تیاریاں کرنا نصیب فرما، ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما، ماتم حسین
لاشوں پہ یہ ہے، لاشوں پہ یہ بچوں کی صدا دیتی تھی مادر، جیتے رہو